गुरवे नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। वृन्दाय तुलसीदत्तये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ते प्रदेदे सत्यवत्ये तवैवास्मि न विजिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय माम चरणे। रामचंद्र जी, अभी दो शब्द पहले आप बोलिए, इसके बाद में फिर हम लोग आरंभ करें।
चक्षुर्मिलं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हम लोग क्या देख सकते हैं? अभी अभी एक प्रार्थना बोली मैंने, ओम अज्ञान तीव्र अंधस्य। यकीन जानो हम लोग अंधे हैं, देख नहीं सकते। एक गांव में एक महात्मा आए, कुछ शिक्षा देने लगे तो गांव वाले बोलते हैं, महाराज झूठ बोलते। अगर प्रण है तो मुझको थोड़ा सा चखा के दिखाओ, कुछ तो करके दिखाओ। ये झूठ है कि रंग है, रोशनी है, सूरज है। तो महाराज हम बड़े दुखी हैं उस संदेह से, हम लोग उसको समझा नहीं पाते। महाराज के पास एक बहुत बड़ा वैद्य था, हकीम था, उससे उसकी आंख ठीक कराई, वो अंधे का अंधापन दूर हो गया। ऐसे ही हम लोग भी अंधे हैं, हम देख नहीं सकते सच्चाई क्या है। हमारी आंखों में दवाई डालकर, हमारी आंखों में कोई ऐसा सुरमा डालकर हमको हमारे ही अपने भगवान के दीप करा दे, दर्शन करा दे, ऐसा कोई वैद्य मिले, ऐसा कोई हकीम मिले, इसको ही गुरु कहते हैं। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु के सामने आज हम बैठे हैं। जो हमारी आंखों में ओम अज्ञान तीव्र अंधस्य, अज्ञान के अंधकार का को दूर करने के लिए सुनने की सगाई से ऐसा अंजन लगाते हैं कि हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? अभी तक हम चमड़ी देख रहे थे, उसके बाद फिर हम असली चीज को देख सकते हैं, सच्चाई क्या है ये देख सकते हैं। हमारे हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि गुरु कौन होता है। हर कोई गुरु नहीं हो सकता है, जिसने भारी मन हो वही गुरु होता है। गुरु मैंने भारी गुरुत्व जिसमें होता है, जो भगवान से चली आ रही परंपरा से आता है वही गुरु हो सकता है। ऐसी श्री कृष्ण से चली आ रही परंपरा से चैतन्य महाप्रभु प्रभु से आगे बढ़ाई हुई परंपरा से, हम इस गौड़िया परंपरा से अपने सम्मुख इन गुरु को देखकर, जो आज करुणा के सागर बनकर, करुणा के सागर से निकली एक बदली बनकर सारे विश्व में अपनी करुणा की वर्षा कर रहे हैं। 85 वर्ष की आयु में संसार में तो लोग 60 साल की आयु में रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज रिटायरमेंट नाम का भी नहीं जानते हैं। और सारे विश्व में घूम घूम कर, और उसका आप कोई प्रूफ देना चाहते हैं तो इस सभा में जहाँ पे हिंदी बोली जा रही है, फिर भी महाराज जी के सारे देश के शिष्य बैठे हुए हैं और सिर्फ यही सुनने के लिए कि महाराज जी की आवाज कान में पड़ जाए और हमारा कल्याण हो जाए। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जी एक ऐसी परंपरा से आए हैं जो कि शब्द सामान्य नहीं, शब्द ब्रह्म देती है, और उनकी ही कृपा से आज जनकपुरी में ये सुंदर रमण बिहारी गौड़िया मठ, जिसमें श्री राधा रमण बिहारी जी परसों स्थापित होने जा रहे हैं, प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, सारा जनकपुरी, सारी दिल्ली, सारा विश्व इस बात का बहुत ही एहसान मंद रहेगा कि ये एक ऐसा मठ खुला है जो सारे विश्व में प्रचार करेगा। भारत कैपिटल आज रमण बिहारी गौड़िया मठ के कारण बन जाएगी, वरना ये ऊपर से कैपिटल थी और अब ये असली कैपिटल भारत की वास्तव में राजधानी बनेगी। भारत की राजधानी दिल्ली नहीं, रमण बिहारी गौड़िया मठ। मैं गुरु महाराज जी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आपकी असीम अनुकंपा से हम इस मठ को प्राप्त किए हैं। सुंदर सुंदर श्री राधा रमण बिहारी जी के यहाँ पर प्रतिष्ठा होने जा रही है। कई लोग ये प्रश्न पूछ बैठते हैं कि आप लोग क्या मूर्ति की पूजा करते हैं, एक मंदिर में मूर्ति लगा के पूजा करते हैं? हमारे यहाँ कभी नहीं कहा हमारे मंदिर में मूर्ति की स्थापना हो रही है, हमारे यहाँ ऐसे श्री विग्रह की स्थापना हो रही है। ये मूर्ति क्या है और विग्रह क्या है? हम लोग मूर्ति उपासक नहीं, हम भगवान के उपासक हैं। ये जो हमारे के अंदर एक बहुत बड़ा शंका और कंफ्यूजन है, मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि इस अलवेले मौके पर हमारी इस कंफ्यूजन को, हमारे इस अज्ञान को दूर करें और हमारे आंखों में वो सुरमा डालकर हमें चक्षु प्रदान करें, ताकि हम उस परम सत्य श्री श्री राधा रमण बिहारी जी के वास्तव में दर्शन कर सकें। श्री गुरु जी
अभी दामोदर महाराज हम किस लिए मठ स्थापन कर रहे हैं? सनातन वैदिक ये बंद ही रहता है। सनातन वैदिक धर्म ये बंद ही रहता है। हम सनातन वैदिक धर्म का जो प्रचार करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, वो सनातन वैदिक धर्म क्या है, भागवत धर्म क्या है, भक्ति क्या है, इस विषय पर संक्षेप में 15-20 मिनट। यद्यपि ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, तब से इनसे निवेदन करें ये हिंदी भाषा में ही, टूटी फूटी भाषा में ही बोलें जो सब लोग समझेंगे।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्री श्री गौर भक्त भीम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सबसे पहले हमारे गुरु पर अपन विष्णुपाद शिष्य भक्त नारायण गोस्वामी के चरण कमलों को अनंत कोटि सत्संग पार्टी का तो वैष्णव सज्जन भक्ति माता होना से बात सब लोग यहाँ पर आया लेकिन सब कुछ कर मौका लेने से आया लेकिन क्या करूँ मैं 10 मिनट कर बोलूँ तो कोई आज का बहुत नाटक लोग पूछ रहे हैं वो मंदिर कॉल में क्या जरूरी है तो कोई हॉस्पिटल कॉल ना क्या कोई स्कूल कॉल ना वैसे तो बहुत आदमी तो कामयाब हो जाएंगे सब गली भी तो दुख दूर रहेंगे मन मंदिर अपने लायक रूप क्यों काज कर रहे हैं पैसे को प्यार करें यह लेकिन यह विचार है काम चीज नहीं है देखो आप देखते हैं बहुत स्कूल कॉलेज है यूनिवर्सिटी भी है वो क्या सीख रहे हैं मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स मेडिसिन यह है लेकिन आप बहुत बड़ा आदमी के पास कुछ ना भाई आप कौन है बोला हमारा नाम ऐसी अग्रवाल है मैं ये हूँ ये मेरा पत्नी है ये मेरा गाय है ये मेरा उपाड़ी है लेकिन बहुत दिन के बाद है जय हाथ में बुरी है वो मुर्गा है सब कुछ कुछ नहीं जानते हैं इसलिए हम महात्मा जी से आप क्या करें तो कोई आपके पास आया तो जो जानना चाहिए आप बनाएंगे वो आपके जीवन जो साकार बनाएंगे इसलिए हम महात्मा जी बनाएंगे और यहाँ पर ठाकुर जी का पूजन करेंगे ऐसा बहुत नास्तिक लोग सोचते हैं ठाकुर जी क्या है यह एक फादर है यह एक लोगों से बने हुए हैं लेकिन यह नहीं है हमारे सनातन धर्म का मूल स्तंभ क्या है भगवान निर्विशेष कभी नहीं पहुंच सकते हैं भगवान सर्वशास्त्र ने बोला भगवान सर्वश्रेष्ठ अगर कृष्ण का रूप नहीं है तो भगवान जी का कौन बताया हजार हजार लोग देखकर कृष्ण का रूप है और जब मैंने कहा मन का बहुत भगवान की निराकार है देखो रामचंद्र को कितना हजार हजार भक्त लोग रामचंद्र को दर्शन हुआ और कोई नास्तिक लोग बोलते हैं भगवान के निर्विशेष कोई रूप नहीं है कोई नाम नहीं कोई शक्ति नहीं कोई लीला नहीं है इसमें सनातन धर्म क्या है कि सनातन धर्म हो ना तीन मास्टर सनातन है एक सनातन मास्टर है भगवान के विग्रह अगवान भगवान के कोई रूप नहीं है उसका रूप उसका सेवा भी अनित्य है इसलिए भगवान एक सनातन वास्तु है और आत्मा यह द्वितीय सनातन वास्तु है आज का कोई लोग भगवान में बोलते हैं आत्मा भगवान से लीन हो जाएंगे लेकिन यह गलत है अगर आत्मा भगवान से लीन हो जाएंगे तो कौन किसके सेवा करेंगे लेकिन एकदम गलत है अगर हम किसी वास्तु से एक हो जाएंगे तो प्रेम कैसे रहेंगे ऐसे भगवान है जीवात्मा है जीवात्मा और भगवान के साथ क्या संबंध है यह सनातन धर्म है यह सनातन धर्म का बहुत भिन्न नाम है कोई भगवान धर्म कोई वैष्णव धर्म कोई जैव धर्म कोई सनातन धर्म कोई प्रेम धर्म इसे भगवान नित्य है आत्मा नित्य है और आत्मा और भगवान के साथ क्या संबंध है प्रेम कोई सेवा यह सनातन धर्म है इसे हम महात्मा ने स्थापित किए हम कोई ना हो यहाँ पर आ रहे हैं और सीख सकते हैं हमारे जीवन का अर्थ क्या है हमारे जगत का कारण क्या है हम किस लिए जन्म लिया हम यहाँ पर किस लिए जन्म लिया केवल खाने पीने के लिए जन्म लिया तो हम सुख है खुद के समान है इसलिए गुरु जी वैष्णव या महात्मा ने स्थापित किए किसने तो हम राधे कृष्ण के संग में प्रेम अगर राधे कृष्ण के चरण में प्रेम हो सेवन उत्पन्न होंगे इसलिए गुरु जी भगवान मन में निशान किया तो यहाँ पर है आत्मा केंद्र यहाँ पर कोई आएंगे वो सीख सकते हैं भगवान क्या है हमारा आत्मा धर्म क्या है जो हमारा सुख सकते हैं सुख मिल सकते हैं लेकिन ये गुरु जी यहाँ पर भगवान ने स्थापित किया इसको पहले सनातन धर्म क्या नहीं है इसको विनाश करना चाहिए इसे आप लोग मान मानो आज कल दिल्ली में देखा सब विदेशी के संस्कृति पीछे पीछे जा रहे हैं खुद के समान है ये ठीक नहीं है आपके संस्कृति को नाचने आने चाहिए, इसे लाज लहसुन प्याज आंडा मुर्गा मुर्गी बाकरा बाकरी इसको सब बंद करना। बीड़ी सिगरेट चाय ये सब तमासिक वास्तु है। अगर हम तमासिक वास्तु नहीं गए तो हम कुछ सुख मिलेगा नहीं, हम दुख मिलेगा। इसे बहुत ये चीज दूर रहेंगे और यहाँ पर आएंगे पुलिस मुकाल भजन मुकाल बिंदु से सीखो भजन सचमुच क्या है। मैं देखा हिंदू समाज है बहुत आदमी बहुत देवा देवी का पूजा कर रहे हैं लेकिन यह ठीक नहीं है। ऋषिकेश गोविंद सेवा ना पूजे देवी देवा। अगर कोई जो एक अंग एक निष्ठा भक्ति होना चाहिए जो एक इसमें ग्रहण करना चाहिए। जैसे कोई पति है उसके पास चार पांच पति है, एक पत्नी चार पांच पति है, यह ठीक है या नहीं है? ये बिल्कुल गलत है। इसे जो चार पांच को इसमें मानते हैं ये भक्ति नहीं है, ये वैश्य का समान है। इसे हम जो सर्व जाम प्रीत जा मामे कम शरणम जा हम तो हम सर्व पापे प्यो वंश से भी मत सोचा। और कृष्णा ये भगवत गीता में बहुत उपदेश दिया लेकिन लास्ट में क्या बोला इसको ग्रहण करो, इसको ग्रहण करो। सर्व जाम प्रीत जा हे अर्जुन सब अनित्य धर्म छोड़ो, अनित्य धर्म जो इस शरीर का संबंधित है इसको छोड़ो सब और मामे कम शरणम जा केवल मेरा पास है मनी एकांतिक रूप से तब बाकी हो सकते। इसलिए यहाँ पर सब आया यहाँ पर आ जाओ केवल खाने के लिए मारा कुछ सीखने के लिए आ जाओ। भजन क्या है, आत्मा क्या है, हरि नाम सचमुच क्या है, हमारे जीवन को सत्ता कैसे बनाएंगे और भक्ति का आनंद को क्या है, भक्ति का बराबरी क्या है। इसलिए सब गुरु जी यहाँ पर कॉलेज सब सीखने के लिए अभी बहुत भाग्यशाली के बाद गुरु जी यहाँ पर और आप लोग बहुत ध्यान से श्रवण करो। ऐसे नए एक सब उपदेश उस स्थान पर आता है और उस स्थान से जाते हैं, ऐसे श्रवण नहीं करना चाहिए। बहुत विश्वास के साथ श्रवण करो और जब सुनते हैं तो थोड़ा वृद्ध बुलाता होना चाहिए जो गुरु जी बोलते मैं पालन करूँ। गुरु जी जैसा उपदेश देते हैं मेरे जीवन में दिल में धारण करो उस उपदेश को पालन करो। ये था गुरु जी का श्रद्धांजलि। ठीक है यहाँ पर मेरा हिंदी सम्मान स्तुति हुई है गुरु जी के द्वारा जो बहुत प्यार मान मान का है। अति उत्तम
सर आपका बहुत
बहुत धन्यवाद।
आपने गुरु
गौर चंद्राय राधिताय तदानय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम ऐश्वर्य रूपात् तन्मुनि असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम की ज्ञापन करता तदनंतर उपस्थित पूजनीय सन्यासीवृंद पूजनीय वैष्णववृंद समस्त सज्जनों माताएं बहनों सभी को मेरा प्रणाम निवेदन। अभी अभी गुरु जी के आज्ञा भी है कि हमारे धर्म जो है वह है सनातन। जब हम संसार में आते हैं तो ये सनातन परंपरा में ही आते हैं। तो ये सनातन धर्म के रूप देखा क्या है? सनातन का अर्थ होता है जो नित्य वर्तमान वास्तव स्थिति का पहचान और उस शुद्ध स्थिति में वास्तव स्थिति में पहुंचे उसी को सनातन। वर्तमान में हम जिस स्थिति में हैं हमारे ये भौतिक भौतिक शरीर को लेकर के हम घूमते हैं, इसी को ही हम मैं हम लोग यही शरीर ही में हैं। ये संसार के खाने पीने रहन सहन के जितने वस्तुएं जितना संग्रह कर लिया जाए उतना ही अच्छा।
उतना ही लाभ यही जीवन की सार्थकता मानते हैं। पर कोई भी व्यक्ति वास्तव शांति प्राप्त नहीं कर पाता। खाना पीना भोग विलास से तो सभी है, जैसे मनुष्यों में वैसे प्राणियों में भी। इसलिए शास्त्रों में कहा है धर्मो ही देशा अधिक विशेष, केवल आहार निद्रा भय और एक दूसरों में प्रेम प्रति प्यार केवल इतना ही जीवन का सार है। धर्म ही मनुष्य जीवन की विशेषता है। हम खाए बिना दो चार दिन, दस दिन, चालीस दिन, पचास दिन तक रह सकते हैं और संसार पर एक ऐसा चीज है जिसके बिना हम एक क्षण भी नहीं सकते, वो है प्यार प्रेम, जिसके बिना हम एक क्षण नहीं रह सकते। जिस समय हमें ये दिखेगा कि हमारे संसार में कोई प्रेम करने वाला प्यार करने वाला नहीं है, उस समय कोई रेल में करते हैं तो कोई आग में जलते हैं, किसी ना किसी तरह से समाप्त कर लेते। तो ये वास्तव प्रेम आनंद में उसी का परे पर्यावरण शब्द है प्रेम। वह वास्तव प्रेम इस जगत में नहीं है, भौतिक वस्तु में नहीं है। इसलिए वेदांत में कहा है रसो वही स रसम जेवायम लब्धानंदी भवति, भगवान श्री हरि रस स्वरो आनंद स्वरो प्रेम स्वर। उस परम प्रेम वाय परमात्मा भगवान श्री हरि को जो कोई प्राप्त करता है वो परम आनंद का ही अनुभव करता है। इसलिए वेदांत में वही बात करते हैं नित्यो नित्ता, जो नित्य वस्तुओं में परम नित्य, चेतन वस्तुओं में जो परम चेतन, एको बहुनाम जो विदधाति कामा, जो एक है और सबकी कामनाओं को पूर्ण करते। जहां तहां हम देखते हैं दीवारों में लिखे रहते हैं क्या लिखता है कि एक राष्ट्र अनेक धर्म, इस पर हमें गर्व है, दीवारों में लिखे मिलते हैं। परंतु सनातन धर्म हमें इस बात को नहीं कहते, वे क्या कहते हैं अनेक राष्ट्र एक धर्म, इस पर हमें गर्व है। बहुत राष्ट्र है पूरे विश्व में किंतु सबका धर्म एक। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा है सबई पुंसाम परम धर्म, प्राणी मात्र का परम धर्म समस्त विश्व के मानव प्राणी समाज जितने भी समाज सबके लिए एक ही धर्म होता है गुरु। वह है अद्भुत से भगवान के चरणों में अपने हृदय के निष्कपट भावना को समर्पण करते। यही संसार में मानव मात्र का प्राणी मात्र का परम धर्म निष्कपट रूप से अपने हृदय के भावना को समर्पण करते। छल कपटता ये सब को छोड़ इसी को परम धर्म का। इसलिए हमारे सनातन धर्म नास्तिकता की बात नहीं कहती है, आस्तिकता की बात करती है। हमारे सनातन धर्म में कौन है मूल देवता, जो एक बहुनाम जो विदधाति कामान, एक भूख करके समस्त जीवों के अंतर्यामी परमात्मा जो झंझटवासी, विश्व के ऐसे कोई भी वस्तु नहीं, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश पहाड़ पर्वत नाग नदी समुद्र सभी कुछ उन्हीं का ही तो स्वरूप है, उन्हीं का ही तो अवयव है, वे सर्वत्र अनुरूप में बैठते हैं। फिर भी वे साकार सच्चिदानंद स्वरूप में वे लीला पुरुषोत्तम है, भक्तों के सामने अपना प्रेममय मूर्तिमान श्री विग्रह स्वरूप में ही स्वयं प्रकट होते हैं, सबकी इच्छा अभिलाषाओं को पूरा कर सकते हैं। इसलिए कहा तम आत्मस्थाम जीवनों पर शांति दिया देशाम सांसदे शांति न मित्रेशा। जो लोग उस परम पुरुष भगवान श्री हरि को अपने हृदय में दर्शन करते वे ही पराशांति को प्राप्त करते हैं, दूसरों को नहीं। जो बहिर्दृष्टि संपन्न है केवल भोगों की ओर, भौतिक वाद की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी आंखों में न तो भक्ति है, न प्रेम है, न श्रद्धा है, न भावना है, और न ही कोई दर्शन होता है। केवल नास्तिकता में ही बने रहते। एक समय एक सज्जन की बात थी, वे कहते रहे, बोले कि भाई हम बचपन से एक मंदिर में जाते रहे और देखा क्या कि मंदिर के दरवाजे में कुछ साधु लोग बैठे रहते। जितने भी महिलाएं आती हैं, माताएं बहनें और जितने लोग आते हैं, कुछ ना कुछ वहां पर चावल पैसे गेहूं इत्यादि सब डाल के जाते हैं। तो एक बार वे बोले कि मैं बहुत दिन जब नौकरी के क्षेत्र में चला गया, काफी देखने लौटा, तो आज लेकर देखा कि वही साधु लोग बैठे हुए हैं। मैंने पूछा भाई आप लोगों को बचपन से मैंने देखा, आज बहुत दिन के बाद में देखा लौटते हुए। पर तो ये मेरा प्रश्न है कि कभी भी इस मंदिर में ना कीर्तन करते हुए, ना भजन करते हुए, ना पूजा करते हुए, ना पाठ करते हुए किसी में भी हमने नहीं देखा, केवल बैठे हुए देखा। तो आप लोग क्या करते हैं? तब उन लोगों ने बताया कि हम लोग पूजा पाठ करते नहीं है। बोले क्यों? बोले हम तो मूर्ति नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते। तो वे बोले अरे मुझे लेकर तुम भगवान को नहीं मानते हो तो मंदिर में क्यों बैठा हुआ है? बोले इसलिए बैठा हुआ है कि मंदिर में सभी लोग आते हैं, लोग खाने पीने को देते हैं और फिर खाने पीने को मिल जाता है और आराम से ही आप खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, इसलिए हम बैठे। बोले अरे बेटा जिनके नाक पर मंदिर में बैठा हुआ तुम्हें खाने पीने को सभी कुछ मिल रहा है, सभी सुख सुविधा है, और उस भगवान को पूजने में तुम्हें इतनी नास्तिकता है विश्वास करने में, तो यही विश्वास नास्तिकों को नहीं होता। उनकी आंखों में कुछ शुद्धता नहीं है, नास्तिकता नहीं। आज समाज में संसार में देखें दो श्रेणी के लोग बने हुए, नास्तिकवादी और आस्तिकवादी। उसी तरह से आस्तिकवादियों में ही दो प्रकार के, एक निराकार निर्विशेषवादी और एक सविशेषवादी। आज देखिए विश्व के अंदर में चाहे हिंदू कहें, मुस्लिम कहें, क्रिश्चियन कहें, सभी में आप देखेंगे बहुत से लोग हैं जो कि निराकारवादी, निराकार की उपासना करते हैं। बोले हम निराकार को मानते, हम भगवान के रूप को नहीं मानते। बोले अच्छी बात है, भगवान के रूप को नहीं मानते तो बात नहीं, परंतु उसका नतीजा और परिणाम जो दिखाई दे रहा है आपके सामने उसमें क्या है? आप देखिए चर्च में जा करके रविवार को पहुंच करके गॉड के सामने वो गॉड फर्गिव मी 7 दिन तो बुरा कर्म करेंगे, जितने बुरे कर्म सब करके और गॉड से फर्गिव मी करेंगे तो गॉड क्षमा करेंगे। आज जितने निराकरवादी हैं देखिए कितने बार उठते और बैठते हैं और कितना प्रार्थना कर रहे हैं अल्लाह अकबर करके, परंतु जितने चोरी डकैती लूट मार बदमाशी और जितने प्रकार के बुरे कर्म हैं सब नहीं हो गए अधिकांश। तो इस उपासना का क्या मतलब हुआ? जब समाज में नैतिकता नहीं, जब कोई आदर्श नहीं है, कोई हमारे अंदर शिक्षा नहीं है। एक मुस्लिम सज्जन मुझे बोले, बोले भाई चैतन्य महाप्रभु जी आए,
सावधानी पूर्वक बोलो,
चैतन्य महाप्रभु जी आए तो एक मुस्लिम ने मुझे बुलाया अपने घर में, बुला करके बैठा, बड़े आदर्श से बोले और बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं हिंदुओं में एक शाक्तवादी है और एक वैष्णव है और एक हिंदूवादी। तो चैतन्य महाप्रभु जी जिस प्रेम धर्म को देखा है वैष्णव, उसमें राधा कृष्ण की उपासना की बात है। उन्होंने कहा महामंत्र कर भेजा राधा कृष्ण की उपासना, ये बात है। बोले उपासना करने से, भक्ति करने से, भगवान से संसार से लोग मुक्त होकर के भगवान के लोग जाएंगे, भगवान के परिकर बन जाएंगे, ये बात सत्य है। वो तो पीछे की बात रही। साधारण समाज में जब देखा जाएगा कि इसका परिणाम क्या निकल रहा है, जितने भी बच्चे धर्म को अपनाने वाले सभी आने वाले पीढ़ी में सभी बच्चे देखते हैं कि हमारे भगवान इतना प्रेमी है और इतने आनंदमय है, प्रेममय है, गुणों के सागर है, दया के सागर है। तो हमें भी जीना होगा संसार में दया के साथ, सभी गुणों के साथ, प्रेम के साथ, प्रति के साथ। आज इच्छा प्रारंभ है तो और जगह देखा जाए नास्तिक नहीं, उसमें समाज की व्यवस्था भी सुगठित नहीं होती। इसलिए कहते हैं निराकार बात के द्वारा कभी भी शांति श्रृंखला नहीं हो सकती, कभी भी समाज सुधार नहीं हो सकता है। गुरुकुल से कल्याण पत्रिका निकलती, उसमें भी इस निराकार बात का खंडन किया। 40 वर्ष की पत्रिका में आए बड़े बड़े सज्जनों ने लिखा है इस बात को कि निराकार के द्वारा, निराकार उपासना के द्वारा कभी भी हमारे समाज, हमारा देश, हमारी भावना और आने वाली पीढ़ी कभी भी सुधार नहीं। जब तक हम भगवान की आराधना नहीं करें, भगवान श्रीहरी वे साकार सच्चिदानंद वाली फिर। इसलिए श्रीमद् कृष्णदेवाय वेदव्यास ने उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन में, और वेदांत दर्शन का कहना है कि हमारे भगवान निराकार निर्विशेष नहीं, वे साकार सच्चिदानंद स्वरूप में, केवल हम जिस जगत में रह रहे हैं इतना भी नहीं, इससे परे बहुत से जगत है, इससे ऊपर में बहुत सारे लोग देवताओं का लोग, उन देवताओं के लोग से ऋषियों का लोग, ब्रह्मलोक का 14 भुवन है, 14 भुवन से ऊपर में सनातन ज्योतिमय ब्रह्मधाम का यह, जहां सिद्धा ब्रह्मत्व के वरदा दैत्यास्त हरिनाथ का, जो कि दैत्य दारण भगवान श्री हरि के हाथों में मारे गए, और सिद्ध पुरुष वे सभी मुक्ति धाम को जाते हैं, मुक्ति धाम में निवास करते हैं। उससे भी ऊपर में जब जाए भगवान नारायण का लोग वैकुंठ धाम है, जहां मुक्ति प्राप्त जीव भगवान के परिकर बन करके निवास करते हैं, और उस वैकुंठ धाम से भी ऊपर है गोलोक वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण के लिए ब्रह्मा जी स्वयं प्रार्थना करते हैं, गोलोक नाम नहीं निज धाम नहीं, देवी वही भगवान श्री हरि का निज धाम कौन सा धाम है? गुरु धाम। उस गुरु धाम के अंतर्गत जहां ब्रजमंडल नित्य ब्रज भूमि है, जहां पर लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने परिकरों के साथ में निवास करते हैं, इसलिए भगवान का अपना धाम है गोलोक धाम। उससे नीचे देवी वही हरि धाम, वे कहते हैं हरि धाम नारायण लोक वैकुंठ धाम, उसके नीचे है महेश धाम शिव लोक, और उससे नीचे ये देवी धाम। देवी धाम के अंतर्गत हम मर जगत में, जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग शोक इस शरीर को हम प्राप्त करते, इसी शरीर के द्वारा हम कर्म करते, और उन कर्मों के द्वारा हम संसार में बंध जाते, जिससे हमारी छुटकारा हो। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिज्ञासा करो, अन्यत्र लोक आया कर्म बंध। जब तो विष्णु भगवान के उद्देश्य से जब कोई कर्म होगा, उससे संसार के बंधनों से मुक्त होगा, और जहां कहीं अपने लिए, पराए लिए और दूसरों के लिए, पुत्र परिवार, धन संसार के लिए, और संसार के लिए जितना जो कुछ भी करते हैं उन सब के द्वारा बंधन होना उससे कभी उद्धार नहीं हो सकते। जब तक भगवत उद्देश्य से कर्म नहीं होगा, उन्हें में समर्पित नहीं होगा, तब तक बंधन अनिवार्य है। इसलिए संसार से छुटकारा पाने का एक ही उपाय भगवान के चरणों में झुकती हूँ, निष्काम भाव से अपने मन प्राण हृदय मन वचन कर्म सभी कुछ समर्पण करें, उन्हीं की आराधना करें। यही सनातन परंपरा है और इसी प्रकार आराधना करते ही उनके स्वरूप की उपलब्धि हो, उनके चरणों में प्रेम हो, प्रीति हो, यही जीवन का सार है। मैं इतना कह करके अपना वक्तव्य विराम करता हूँ।
ठीक है, अभी और मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ।
मेरा आपसे निवेदन है कि जो यहाँ कहा गया कि बहुत बड़ा मठ बन गया, बहुत बड़ा काम हो गया, ये तो अभी भवन तैयार हुआ। बहुत बड़ा काम तो तब होगा जब आप सब लोग, हम लोग सब लोग मिलके जिस काम को महाराज जी आज 50 साल से लगे हुए हैं उसको पूरा करें, श्री कृष्ण के प्रेम को, राधा रानी के प्रेम को लोगों तक पहुंचाएं, महाराज जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाएं, उनको जोड़े, तब इस मठ की सार्थकता है। नहीं तो बहुत सारे और भी मठ हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इससे भी बड़े मंदिर दिल्ली में हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं है। एक तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, आज ये निर्णय लेके आप जाएं कि महाराज जी के विचारों को हम फैलाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात एक कही गई सनातन धर्म के बारे में, महाराज जी के साहित्य को मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरूर पढ़ें। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको ध्यान से पढ़ें। मेरा अपना विश्वास है, तो थोड़ा बहुत मैंने अध्ययन किया है कि बहुत बहुत सालों के बाद मैं एक जवाबदेही से कह रहा हूं, ये बात बहुत बहुत सालों के बाद जिन पुराने साहित्यों को महाराज जी ने फिर से प्रकाशित किया है उन सब में नवीनता है। इस बात को आप बड़े ध्यान से जब उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे। महाराज जी की गीता महाराज जी ने जिस तरीके से सनातन धर्म की व्याख्या की है वो अद्भुत है। 25-30 टीकाएं शायद मेरे कमरे में भी होगी, उससे अधिक मैंने पढ़ने की कोशिश भी की है, लेकिन जिस सरलता से गीता की बात को महाराज जी ने लिखा है और पहुंचाया है वो दूसरी टीकाओं में नहीं है। बड़े बड़े लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, शायद अपराध हो जाए, लेकिन मैं बहुत जवाबदेही से कहना चाहता हूं, इस तरीके के साहित्य की रचना बहुत सालों के बाद होती है या बहुत युग के बाद होती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के समय में उनके जो लोग उनकी कृपा से जिन साहित्यों का निर्माण हुआ आप सब जानते हैं कि उसके बहुत सालों के बाद वो बात कमजोर पड़ गई। फिर करीब 100-150 साल पहले कुछ आचार्य हुए जिन्होंने वापस और साहित्यों की रचना की और उसका प्रचार प्रसार किया, और उसके बाद फिर एक लंबी पीढ़ी गुजर गई। शायद इसे कुछ लोग मुझसे विवाद भी करें, मैं अपने विचार दे रहा हूं। और उसके बाद फिर महाराज जी ने ये काम किया। महाराज जी ने ये काम अपनी इच्छा से किया ये मैं नहीं जानता, या महाराज जी से ये काम भगवान ने कराया ये मेरी अपनी मान्यता है। मैं इस बात को बहुत जवाबदेही से मानता हूं। मेरा अपना विश्वास है कि बहुत समय के बाद जब भगवान के परिकर इस धराधाम पर आते हैं और भगवान जब उनको चाहते हैं तब प्रकाशित करते हैं, हमें उनका बोध या उनके साथ जो लोग रहते हैं उनको भी उसका बोध नहीं होता। इसका सारा उदाहरण हमारे धर्म ग्रंथों में भरा पड़ा है। सारा श्री कृष्ण का 125 साल का जीवन है, आप पढ़ें। उसे बहुत से लोग जो उनके बहुत नजदीक थे उनको भी ये बोध नहीं था कि साक्षात भगवान है। तो इसलिए बहुत बार जो साथ के लोग रहते हैं बहुत लंबे समय से, कोई जरूरी नहीं है कि उनको इस बात का बोध हो जाए कि महाराज जी क्या है। महाराज जी, मैं अभी 3-4 महीने पहले नोएडा में महाराज जी की कथा हुई, बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था। सहसा एक दिन मुझे लगा, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि आप अगर ध्यान से सुने तो शायद आपको ये लगे जो मुझे लगा, कोई विशेषता नहीं है मुझे, कि अभी अभी श्री कृष्ण यहां थे और यही कहीं है। ये बोध महाराज जी अपनी इतनी सरलता से इस बात को हमारे अंदर पहुंचा देते हैं, अपनी सरल भाषा से यह बात, बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान की परिकर के कोई नहीं पहुंचा सकता है। यह बात में बड़े, और सब लोग आप बड़े भाग्यवान हैं, महाराज जी का सानिध्य मिल रहा है, महाराज जी की कृपा मिल रही है, महाराज जी का आशीष वचन मिल रहा है, और इसका हम लाभ उठाकर बहुत जल्दी जो बात शुरू में कही गई कि अज्ञानता है उसको दूर करें। सच तो यह है कि इस जहां हम लोग अभी बैठे हैं इसके पीछे अगर कोई कहे कि कुछ है, आप कहें दिखाई नहीं दे रहा है, हमें दिख नहीं रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके पीछे कुछ नहीं है। इसके पीछे पूरी एक कॉलोनी है, लाखों लोग रह रहे हैं, हमें यहाँ बैठे बैठे दिखाई नहीं दे रहा। यही काम होता है कि एक संत जो भगवत कृपा प्राप्त है, भगवान का अपना दूत है, जिसे हम दूत कहें, परिकर कहें, हम कुछ भी नाम दें, जो साक्षात गोलोक से यहाँ आकर हमारा कल्याण कर रहा है, हम उसका लाभ उठाएं और महाराज जी की बात को जन जन तक पहुंचाएं। इसके साथ ही महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं।
अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने सनातन धर्म की रूपरेखा पर अपना सुंदर विचार प्रकट किया। सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे यहाँ श्री रमन बिहारी गौड़ीय मठ स्थापन में जैसे भी उन लोगों ने जो कुछ भी हमारी सहायता की। बहुत लोग हैं, उनका नाम लेना संभव नहीं, किंतु बहुत वर्षों हमारे पहले इच्छा थी, विश्व में सर्वत्र हमारे आश्रम हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, कहाँ कहाँ है, दक्षिण भारत में भी बेंगलोर इत्यादि स्थानों में, मद्रास इत्यादि में है, बम्बई में है, कि राजधानी दिल्ली में हमारा कोई आश्रम नहीं है। विदेशों से लोग आते हैं जाते हैं, इसलिए एक होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने दिल्ली के विशेष
कुछ लोग उन लोगों को दे करके एक कमेटी बनाया जो जल्दी से जमीन संग्रह करके यहाँ पर किया। भगवान की इच्छा से जनकपुरी में यही स्थान बड़ी सरलता सुगमता से मिली और भगवान की इच्छा से एक छोटा सा आश्रम भी बन गया। इसलिए जिन लोगों ने जिस रूप में जैसे तैसे इसमें सहायता प्रदान कर दिया है उन सब लोगों को मैं विशेष विशेष धन्यवाद प्रदान करता हूँ। मठ मंदिर का स्थापन का उद्देश्य क्या है? अभी हमारे विदेशी भक्त दामोदर महाराज जी ने, फिर हमारे तीर्थ महाराज जी इत्यादि ने थोड़ा सा बतलाया, मैं भी आप लोगों के सामने थोड़ा सा निवेदन करता हूँ और इसके बाद में यहाँ पर कीर्तन होगा, आप लोग श्रवण करेंगे। मैं बहुत थोड़े समय में ही अपने विचारों को व्यक्त करूँगा। हम लोग सनातन वैदिक धर्म के प्रचारक हैं, जिसके आदि गुरु ब्रह्मा हैं, उनसे नारद आए, उसी परंपरा में वेद व्यास आए, उसी में मध्वाचार्य जी आए, उसी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु उनके रूप सनातन इत्यादि आए, इस तरह से उसी परंपरा अभी तक चल रही है। इन लोगों ने जगत को क्या दिया, क्या संवाद दिया? सनातन वैदिक धर्म, समाज सनातन वैदिक तत्व ज्ञान। वेद व्यास जी ने श्रुतियों को चार भागों में विभाग किया और अपने चार शिष्यों को उनको अध्ययन कराया। इसके बाद भी उन्होंने वेदांत सूत्र नामक एक ग्रंथ की रचना की। वेदांत माने वेद का अंत भाग, शिरो भाग, वेदांत का सार उसमें दिया। वेदों में दो भाग हैं, एक ब्राह्मण भाग एक उपनिषद भाग। ब्राह्मण भाग में यज्ञ इत्यादि की बातें हैं और उपनिषद में तत्व ज्ञान की बातें हैं। वेद व्यास ने किया इसका, वेदों का विभाग किया, वेदांत सूत्र लिखा। इसके बाद में सरल सहज रूप में स्त्री पुरुष भी इस तत्व को जान सके, इसलिए उन्होंने महाभारत की रचना की। तो भी उनको शांति नहीं हुई, कुछ चित्त उनका शुद्ध था। हठात सम्याप्रस्थ आश्रम में भगवती भागीरथी के तट पर खिन्न होकर के बैठे थे, इतने में गुरु देवर्षि नारद जी आए। कुशल है, तुमने वेदों का विभाग किया, महाभारत की रचना की, वेदांत सूत्र की रचना की, 36 पुराणों की आपने रचना की, कुछ बाकी नहीं रहा, शांति तो है? गुरुजी आप ठीक कहते हैं, मुझे शांति नहीं है। क्यों नहीं शांति है गुरुजी? तब यही तो मैं नहीं जानता, आप वैद्य हैं आप बतलाइए क्यों मुझे शांति है। तो उन्होंने कहा, तुमने इन सब ग्रंथों में जो कुछ लिखा उसमें धर्म अर्थ और काम की ही बातें लिखी, कहीं कहीं मोक्ष की भी बातें लिखी है, किंतु प्रधानतः यही है। भाभारत में क्या है, चारणों आश्रमों वर्णों का धर्म इत्यादि, धर्म अर्थ काम और अंत में मोक्ष तक शांति पर्व में कुछ है, इतना ही किया। किंतु जो करना चाहिए था तुमने नहीं किया इन ग्रंथों में। उन ग्रंथों के अध्ययन से भगवान कौन है कोई विचार नहीं कर सकता। इसको लिखो, तुमने भगवान की आनंदमयी कथाओं को, रसमयी कथाओं को तुमने वर्णन नहीं किया, इसका वर्णन करो। क्या तुमने लिखा या परब्रह्म सर्वव्यापी जिसका आदि अंत नहीं है, कोई आदि अंत नहीं, आरंभ नहीं, नीचे और ऊपर नहीं, उस परब्रह्म को मैया यशोदा ने अपने वात्सल्य रस से रस्सी में बांध दिया और वह टुकड़ टुकड़ रोने लग गया। लिखा कहीं तुमने, कहीं ऐसा लिखा जो वो परब्रह्म गोपियों के चरणों में गिड़गिड़ा रहा है और अब ऐसी गलती नहीं करूंगा ऐसी कह रहा है? नंद बाबा की जूती सिर पर लेकर के चलता है, ये लिखा कहीं? नहीं लिखा। तो फिर इसलिए तुमको शांति नहीं है, इसलिए तुम इन लीलाओं का दर्शन करो, भगवान साकार है, निर्विशेष नहीं है, निरंजन, निराकार, अरूप, अनादि, निर्गुण, ये सब मत लिखो, है वही निर्गुण, निर्गुण है और वही साकार है, दोनों में कोई अंतर नहीं, प्राकृत गुणों से अतीत है इसलिए वो निर्गुण है और अखिल समस्त अप्राकृत गुणों का भंडार है इसलिए वो सविशेष साकार है। प्रभु हमारी तो अनुभूति नहीं, कैसे लिखें? और भक्ति योग का आश्रय, भक्ति योग किसको कहते हैं? एकांतिक रूप में भक्ति का आश्रय ले और उसमें है शरणागति। तुम शरणागत हो, तुम कुछ करने वाले नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं सकते। भक्ति स्वतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं, उनके शरणागत हो। हमारे गौतम बुद्ध आज से पांच छह कुछ वर्ष पहले, हजार वर्ष पहले गए गया में अध्ययन लगाया, गुरु तो थे नहीं, बहुत दिनों तक तो ध्यान लगा कुछ नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि भगवान निरा कुछ आई नहीं है, झूठ मूठ वेद झूठ है, भगवान भी झूठे हैं, कल्पना है केवल, उनको कुछ नहीं मिला। किंतु नारद जी के उपदेश से व्यास जी ने भक्ति योग का आश्रय लिया। पहले देखिए कि भक्ति क्या है, तन मन वचन और भावनाओं की सारी चेष्टाएं, अपनी चेष्टाएं गुरु के अनुगत में नयन तय तय धारावत अविच्छिन्न गति से भगवान की चरणों में लगे, तो यह है भक्ति। तन मन वचन और भावना, इन सारी चेष्टाओं से गुरु के अनुगत्य में निरंतर तैक धारावत अविच्छिन्न गति से मन की गति और यह सब चेष्टाएं भगवान की सेवा में लगे और उसे अपना कुछ नहीं, स्वार्थ नहीं, कृष्ण के लिए ही ये सारी चेष्टाएं। व्यास जी ने ऐसा किया, समाधि लग गई और देखा क्या, अपुरुषम पूर्णम मायांच जदा अपाश्यान। देखा क्या, अखिल विश्व ब्रह्मांड, और उसमें देखा सब आराध्य ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को देखा, उनकी सारी शक्तियों को देखा। उन्होंने श्रीमती राधिका जी, ललिता, विशाखा इत्यादि, जसोदा मैया, नंद बाबा, सुवंशी धाम इत्यादि सखाओं को देखा, और जन्म से लेकर के जितने लीलाएं हैं वो सब लीलाओं को उन्होंने देखा। और देखा क्या, पीछे में माया, जो जीव भगवान को भूल करके स्वतंत्रता का अपव्यवहार कर रहा है, माया उसको पकड़ करके बहुत दूर इस संसार में फेंक रही है, और उसको स्थूल और लिंग दो प्रकार के शरीरों में आबद्ध करके नित्य काल के लिए चक्कर में, 84 के फेर में फेंक देती है। जो लोग फिर भगवान के भक्तों का संग करते हैं वो लोग फिर भक्ति को ग्रहण करके अब भगवान के समीप जाकर के उनकी सेवा को पाते हैं। जैसा वही सुयमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति रूपते पुंसः शोक मोह भया, फिर उसका संकलन करके समाधि ग्रंथ श्रीमद् भागवत की रचना की। इसलिए समस्त ग्रंथों का सार ये श्रीमद् भागवत अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ निर्णय गायत्री भाष रूपो असौ वेदार्थ पंडित, ये भागवत है। भागवत ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ सरल सहज उपाय से अपने प्राप्ति और सेवा के लिए जो कुछ बतलाया है इसी का नाम भागवत है। सहज सरल तरीके से किस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उन विधियों का ही नाम भागवत है। जहां पर भागवत समाप्त हुआ वहां पर लिखा गया नाम संकीर्तनम जस्य सब पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि, अंत में ये लिखा उनका नाम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु जी ने आज से 5000 वर्ष पहले उन्होंने यही कहा, हरि नाम संकीर्तन, हरे नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव, और कोई गति नहीं है, गति नहीं है। इसलिए किसी की बात न मान करके आप लोग सर्वसाज रूप में महामंत्र चलते फिरते उठते बैठते बिना माला का सवेरे शाम दोपहर को खा करके बिना खाए, स्नान करके बिना स्नान किए, चलते फिरते भी ड्राइविंग करते हुए माला से ना करके हरे कृष्ण नाम से, और इसका फल कितना मान है आप समझ सकते हैं। अजामिल कोटि कोटि अपराधों का अपराध किया, जन्म भर यही किया, माता पिता स्त्री पुत्र को छोड़ करके शराब पीना, लोगों की हत्या करना, लूट पाट सब कुछ किया, और एक नाम से नारायण से सब पाप दूर हो गया, और अंत में फिर भगवान को प्राप्त कर, कितनी उनकी महिमा है। इसलिए भगवान जो कृष्ण ने जो भागवत में लीलाएं की इसका वर्णन किया है। और एक बात और संक्षेप में कह दूं, और उस भागवत में सार यही है, सवई पुंसंग परो धर्मो जतो भक्ति रघुकजे अहेतु कव्यवहिता जा भक्ति पुरुषोत्तम। अभी जो भक्ति का डेफिनेशन, भगवान की सेवा ही सर्वोत्तम, प्राणी मात्र के लिए इसमें हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई इत्यादि की कोई बात नहीं। एक बात ये कहना चाहता हूं संक्षेप में, अभी इन्होंने जिक्र किया हमारे यहां बहुत धर्म है, किंतु धर्म नहीं है, सामाजिक रूप में जीवन धारण करने के लिए विधियां में हैं। यदि हमारे वैदिक रीति के अनुसार में एक भगवान का यदि भजन किया जाए तो उसमें सब कुछ हो जाता है। जैसे कोई मूर्ति नहीं मानते, कोई मानते हैं, कहते पत्थर ये मूर्ति कैसे, भगवान नहीं है, खाते पीते चलते फिरते नहीं है। और भगवान का यदि आकार मान लिया जाता है तो सर्वव्यापी कैसे रहेंगे, संभव नहीं। किंतु मैं देखता हूं कि संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सबने भगवान को साकार ही माना। बाइबिल, बाइबिल में फर्स्ट चैप्टर में ऐसा कहा गया, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। ब्रह्म ने, गॉड ने अपने रूप के अनुसार मनुष्य को बनाया। मतलब क्या, जब उनका रूप ही नहीं है तो वो कैसे बनाया, बनाए कैसे उनका रूप नहीं है तो। इस प्रसंग में ये कह दूं कि हमारे वो क्या नाम है उनका, ईसा मसीह जेसस जो थे वो इंडिया में आए, वृंदावन में गए, फिर दक्षिण भारत में गए। वृंदावन में आए तो उनका नाम कृष्ण सुना, जय ये भगवान है। उनके विग्रहों को देखा, बड़े प्रभावित हुए। और दक्षिण में गए जब पुरी में, तो उनका नाम कृष्ण सुना। कहीं कहीं पर केष्ट, फिर कृष्ण। और फिर वो अपने देश में गए तो उनसे उच्चारण ठीक नहीं है तो वो क्राइस्ट बोले, इसलिए कृष्ण ही वो कृष्ण हैं, कृष्ण हैं और इसलिए अलग अलग नहीं। और उनका रूप है, युक्ति के लिए देखिए, निराकार, निर्गुण, अरूप। अरूप शब्द है, मौलिक शब्द नहीं है, रूप है मौलिक शब्द। उसमें अ लगा करके तब अरूप बना, अरूप से रूप नहीं बना है, रूप से अरूप बना है। वैसे गुण से निर्गुण बना है, आकार से तो फिर निराकार बना है, क्योंकि वो लोग मौलिक शब्द नहीं है। और भी देखिए, मुसलमानों में के कुरान शरीफ में लिखा गया है, इन्ना अल्लाहा खलाका मैन सूरत ही, खुदा तल्ला ने अपने रूप के अनुसार में मनुष्यों को बनाया। ये सब कैसे, जब रूप नहीं है तो उनको काट दें, काट नहीं सकते। इसलिए हमारे यहां भी शास्त्रों में लिखा है, अरूप की इत्यादि बतलाया गया है, इसलिए कि प्राकृत रूप उनका नहीं है, अप्राकृत रूप है। कृष्ण यहां भी हैं किंतु भक्ति नहीं होने इसको देख, आत्मा इसके अंदर में है किंतु आत्मा को हम देखते नहीं है, शरीर को मान रखा है जो मैं हूं। इसलिए सबसे पहले इस चीज को समझो, जो मैं शरीर नहीं हूं, यह हाड़ मांस रक्त पैखाना पेशाब की थैली है, इसके अंदर में आत्मा और परमात्मा है। इस मनुष्य जीवन में यदि इस चीज को रियलाइज अनुभूति नहीं की तो मनुष्य जन्म वृथा है। और यह होगा सहज में भगवान का नाम करने से, जो पहला बदला है। इसलिए समझो, हम आए हैं इसकी अनुभूति के लिए कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। उनको भूल करके हम इधर में आ गए। वी आर पार्ट पार्सल ऑफ दैट सुप्रीम लॉ। और ये भूल करके आए हैं। यदि किसी कारण से साधु संत वहां संग हुआ, तो आत्मधर्म की शिक्षा दे करके जो तुम भगवान के अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाश, चेतन अमल सहज सुख राश, समझो। जब मैं जीवात्मा हूं, शुद्ध हूं, अभी हम स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में जैसे हम दुख पा रहे हैं, इधर उधर कहीं आग लग गई, मैं जल रहा हूं और नींद खुली थी, देखा जाए कुछ नहीं, ऐसे ही इस चीज को समझो। बस इस जगत में, जीवन में भगवान का नाम का आश्रय करो, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तत धाम वृंदावनम, रम्या काचित उपासना पजुपत वर्गैन जाकल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमापुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदं तत्रादो नः। आराध्य जगत के वही है, कृष्ण है ब्रजंदन, मथुरेश कृष्ण या द्वारकेश कृष्ण भी नहीं, कृष्ण ही वो ब्रजंदनंदन कृष्ण के रूप में, द्वारकाधीश कृष्ण के रूप में, वही राम के रूप में, निशिंघ कल्कि बामन इत्यादि सभी रूपों में वो कृष्ण ही आते हैं। चांद एक है किंतु एकम द्वितीय तृतीय चतुर्थी के चांद अलग अलग दिखते हैं, यहां से दिखते हैं, जब ऊपर में जाओ तो देखोगे जैसे वहां पर कुछ नहीं, एक अखंड सूर्य चंद्र है, ऐसे ही भगवान एक है, विश्व ब्रह्मांड एक है, तो 10-20 भगवान नहीं है, भाषा का देश भेद से उनका नाम अलग अलग हो सकता है किंतु एक ही है। हमारे सनातन ऋषियों ने बहुत परिश्रम करके कोटि कोटो वर्षों की समाधि इत्यादि के बाद में उनका दर्शन करके जो लिखा है वही सत्य है। आज इस सत्य की उपलब्धि मैं देख रहा हूं कि विश्व में सर्वत्र प्रचारित हो रहा है और सब लोग इसे ग्रहण कर रहे हैं। कृष्ण स्वयं भगवान एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान, इसलिए उनको मान करके उनकी आराधना करके, आराधना माने हरिनाम करके और सहज सरल रूप से उनको प्राप्त कर सकते हैं। यही कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप लोग सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा हरे 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 राम राम राम। अब आप लोग आरंभ कर सकते हैं।